ओम शांति। हमारे जो पूर्वजों की सीरीज चल रही है उनमें भाई साहब ने हमें जो टॉपिक दिया था दादी चंद्रमणि जी के जीवन पर बोलना है, तो परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ की स्थापना की और उस ज्ञान यज्ञ में ऐसे प्रभु प्रेमी और साहसी आत्माओं ने अपना तन मन धन और सर्वस्व समर्पण किया। वो जो आत्माएं थी कि जिन्होंने बहुत सारा यानी शीतम सहन करना पड़ा, बहुत उसने यानी विरोध भास हुआ तो भी उसने सहन किया और कठिन और कठोर ऐसी सेवा भी उसको दी गई तो भी एक प्रभु की आज्ञा ईश्वरी आज्ञा समझकर वो उन्हें सहज की। और जो योगी जीवन के नियम और मर्यादाएं थी वो उसका ही परिपूर्ण उन्हें पालन किया। उनके द्वारा यानी किसी को भी ऐसे किसी के जीवन में वो समस्या रूप नहीं बने तो हरेक के जीवन का उन्हें समाधान किया। और उन्होंने यानी किसी के जीवन में यानी ऐसे दुख नहीं दिया किसी को, न उन्हें किसी मान की इच्छा थी न श्यान की तृष्णा थी, यानी हर एक को उन्होंने आगे बढ़ाया। बड़े को सदा उन्होंने सम्मान दिया, से जो साथी थे उसको उन्होंने गले लगाया और जो छोटे थे उन्होंने रिगार्ड रिस्पेक्ट दिया। यज्ञ में ऐसी पालना दी कि जिन लोगों ने उन्होंने पालना दी वो लोग बड़े बड़े यानी उत्तरदायित्व संभालने की योग्यता उनमें भर दी। ऐसे जो हमारे पूर्वज थे जो आदि रतन थे यज्ञ में, उनमें से एक आदि रतन थी हमारी दादी चंद्रमणि जी। तो वैसा दादी चंद्रमणि जी का लौकिक नाम मोतिल था, बाबा ने बाद में उसका नाम यानी मोती रखा ब्रह्मा बाबा ने, और अव्यक्त नाम उसका बाप दादा ने यानी चंद्रमणि दादी रखा। तो अब उसके गुण और विशेषता अनुसार रखा क्योंकि दादी में यानी एक सरलता और शीतलता का ऐसा स्वभाव था उसका, उसके कारण उसका नाम चंद्रमणि रखा। तो ऐसी महान आत्माओं के अपन यानी जीवन कहानी थोड़ी सुनेंगे। तो दादी का लौकिक जन्म सिंध हैदराबाद में जाने माने ऊंचे घराने में हुआ। वो घराना इतना ऊंचा था, वो अमीर लोग थे, लेकिन इतने अमीर घराने में जन्म होते हुए भी दादी को कोई अभिमान नहीं था, यानी वो बेहद की त्याग मूर्ति थी और नम्रता की प्रतिरूप थी। वो सहनशीलता गुण था उसके अंदर में, निर्भय थी वो और शक्ति रूप थी। वो किसी को डरती नहीं थी, जो भी भाषण भी करती थी इतने निर्भयता से करती थी कि जो भी लोग उसका भाषण सुनते थे तो उसके अंदर परिवर्तन हो जाता था। तो इस प्रकार वो ज्ञान बताती थी। और वो कभी भी यानी स्टेज पर आने का उसने ख्याल नहीं रखा, तो वो उसने अपनी स्टेज ऊंची रखकर भी सेवा की उन्होंने। और वो दादी सदा यही कहा करती थी कि प्रजा तो अपने आप बन जाएंगी लेकिन हमें वारिस क्वालिटी निकालनी है, तो वारिस आत्मा ही निकालना है। तो बाद में अपन दादी ज्ञान में कैसी आई ये तो उसका जीवन परिचय हो गया। तो ज्ञान में आने के लिए दादी के जीवन में दो घटनाएं घटी। तो उसमें वो सात बहनें थी और एक भाई था। तो उसमें से जो एक भाई था उसने उसका देहांत हो गया, उसने शरीर छोड़ा, और इस सात बहनों में से एक बहन थी उनके पति ने शरीर छोड़ा। ये दोनों दुख की घटना उसके परिवार में होगी, लौकिक परिवार में, उसी कारण उसका परिवार बहुत दुखी रहता था। तो उसके दुख का निवारण होना चाहिए इसलिए बाकी लोग उसको सांत्वना करने के लिए उसके घर में आते थे। तो बाद में एक दिन उसके एक पड़ोसी माता आ गई और उसकी एक बहन थी लौकिक बहन, उसकी सास, वो लोग आ गए। उन्होंने बोला कि दादा यानी लेखराज उनके घर में वो सत्संग चलता है, यदि वो सत्संग में आप जाएंगे तो आपका दुख दूर हो जाएगा। तो बाद में एक दो दिन के बाद दादी वो अपने लौकिक बहन, उनका नाम हृदय पुष्पा दादी था, वो दोनों भी बाबा के लौकिक घर में गए। तो उस समय बाबा अपने घर में नहीं थे, तो वो अपने चाचा का जो मूलचंद जी नाम था उसके घर में थे, वो एक कमरे में बैठ करके बैठे थे। और वहां पर एक बहन थी वो ध्यान में गई थी, दादी जाकर वहां पर बैठ गई। बैठने के बाद वो जो ध्यान में बैठी थी वो बहन वो एकदम आवाज करने लगी कि विमान जा रहा, विमान जा रहा। तो फिर दादी भी उस समय एकदम करंट सा लग गया दादी को और दादी एकदम ध्यान में चली गई, अशरीर हो गई और ध्यान में चली गई और दादी ने ध्यान में देखा कि विश्व विमान में बैठ करके दादी एकदम वतन में चली गई और बाबा के पास कितने समय रही ये दादी को पता नहीं। तो बाद में थोड़े यानी बहुत समय रही और बाद में दादी की आंखें खुल गई तो उस समय रात के 10 बज गए थे। तो 10 बजे तब तक ध्यान में थी वो, आंखें खुल गई तो उसने देखा वहां पर कोई भी नहीं थे। तो फिर बाद में देखा उनने बाबा आए और बाबा ने बोला बच्ची बहुत समय हो गया आप कल आना। बाद में दादी दूसरे दिन अपने बहन को लेकर वहां पर गई तो वहां पर मम्मा भी थी। तो दादी ने मम्मा को तो पहले पहचानती थी दादी क्योंकि उसकी एक ही स्कूल में दोनों पढ़ते थे। तो उस समय यानी मम्मा का बहुत विशेषता और गुण के कारण स्कूल में सभी उसको पहचानते थे क्योंकि मम्मा कम बोलती थी और मीठा बोलती थी और बहुत अच्छे गीत गाती थी तो और बहुत फैशनेबल भी रहती थी स्कूल में। तो यहाँ तक दादी ने उसको देखा था। बाद में जब बाबा के घर में देखा तो एकदम सिंपल थी यानी सादे ड्रेस में थी, बाल उसके खुले थे और कुछ भी दागिना पहना हुआ नहीं था। तो दादी का वो यानी दादी ने वो मम्मा का जो एकदम सिंपल जीवन देखा तो दादी को अच्छा आकर्षण हो गया इसमें आने के कारण इसका जीवन इतना परिवर्तन हो गया। बाद में मम्मा ने वहां पर एक गीत गाया, बहुत मीठा गीत गाया था कि उसके सार दादी ने बताया कि वो मंडली में मैंने क्या देखा, इसके वो सार था बोलते वो गीत का। तो वो गीत भी उसको अच्छा लगा। बाद में बाबा ने उसकी जो बहन थी वृद्धि पुष्पा दादी उसको यानी प्रश्न उत्तर पूछे कुछ, तो वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसके पति ने शरीर छोड़ा था। तो फिर वो बाबा ने प्रश्न उत्तर में यानी प्रश्न पूछते पूछते उसको ऐसा अनुभव करा दिया यानी उसको आत्मा का अनुभव हो गया, कुछ साक्षात्कार भी हो गया। और बाद में बाबा ने पूछा दादी के बहन को तो आप कौन हो, तो बाद में वो बोलने लगी मैं एक सुखी नारी हूँ। पहले खुद को दुखी नारी समझती थी बाद में सुखी समझने लगी। तो इस प्रकार उनको बाबा ने बाद में ज्ञान दिया। बाद में दादी ने देखा कि बाबा ऐसे बाहर खड़े है और एकदम विशाल रूप बाबा का देखा, जमीन से लेकर आसमान तक बहुत बाबा बड़े दिखे उनको और दादी भी खुद को यानी आत्मस्मृति में देखने लगी। तो इस प्रकार दादी को वो आत्मा का यानी साक्षात्कार यानी सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ उस समय वहां पर। तो होने के बाद फिर जो दादी ने उस समय तो कोई ज्ञान वो बाबा बता रहे थे तो मगर ज्ञान तो उतना दादी को ये समझा नहीं, मगर जो बाबा का यानी रूहानियत और अव्यक्त जो स्थिति देखी उस पर दादी एकदम खिंच गई और दादी को जीवन बहुत अच्छा लगा। बाद में बाबा ने उसको दादी को पूरा ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद यानी दादी को यानी दादी शिव बाबा और ब्रह्मा वह एक ही समझती थी, अलग नहीं ऐसा कुछ उसको ये नहीं हुआ था। बाद में कुछ दिन के बाद दादी को समझ में आया कि शिव बाबा अलग है और ब्रह्मा बाबा अलग है क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके उनके द्वारा ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार दादी को बाद में ज्ञान स्पष्ट हो गया और बाद में दादी के लौकिक परिवार के सभी लोग ज्ञान में चलने लगे। बाद में उनके पिताजी थे वो शराबी थे, शराब पीते थे, कबाब खाते थे। तो उसके कारण जब ज्ञान में आ गए वो तो उसने सब एक झटके में छोड़ दिया यानी बुरा या सब छोड़ दिया उन्होंने। तो इस प्रकार दादी के सारा परिवार ज्ञान में आ गया। और बाद में दादी पढ़ाई पढ़ती थी तो दादी ने एक दिन बाबा को पूछा कि बाबा मैं स्कूल छोड़ दूं क्या। तो बाबा ने बोला नहीं बच्ची, यदि आप स्कूल छोड़ेंगे तो बच्चे को और टीचर को ज्ञान कौन सुनाएंगे, आप उनको आपको ज्ञान सुनाना है ना, इसलिए आप पढ़ाई पढ़ो। तो कुछ दिन के बाद बाबा ने वहां पर ओम मंडली की स्थापना हुई और उस ओम मंडली में यानी बोर्डिंग स्कूल खोली तो वहां पर 30-40 बच्चे थे। तो बाद में बाबा ने दादी को उस बच्चे के टीचर के रूप में उसको नियुक्त कर दिया। तो बाद में दादी वहां पर इंग्लिश का उसको सब्जेक्ट पढ़ाती थी बच्चे को और बाकी बहने बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते थे। इस प्रकार उन बच्चों की कैसी पालना करना क्या करना बाबा ने सब दादी को सिखा दिया, दादी सब उसकी पालना करती थी। तो इस प्रकार वहां पर यानी दादी वो मंडली में बाद में रहने लगी। तो दादी भी और उनके परिवार के लोग भी लौकिक परिवार के जो पिता थे माँ थी वो भी वो मंडली में रहते, सब लोग समर्पित होने जैसे हो गए। बाद में दादी ने अपने जीवन काल में बताया है कि जब भारत पाकिस्तान की यानी विभाजन हो गया उस समय क्या बोला उन्होंने कि दादी ने जिस शब्द में वर्णन किया है कि जैसा बार कतलाम हो रहा है और अंदर हमें बाबा ने सूक्ष्म वतन में बिठा के रखा है, यानी उस समय तो बहुत बार हंगामा हो रहा था ना, क्योंकि लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे, तो इस प्रकार का वातावरण था। तो बाबा को भी ऐसा ये तो लग रहा था कि जो बाहर का समाचार है, यानी वो बच्चों ने सुनना नहीं चाहिए बा, क्योंकि वो सुनेंगे तो बच्चे पर यानी उसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए बाबा वो समाचार भी सुनने नहीं देते थे और कोई अखबार वगैरह वहां पर पढ़ने भी नहीं देते थे। और बाबा खुद में यानी उनको यानी बताते भी नहीं समाचार बाहर क्या हो गया करके। तो बाद में दादी बता रही कि वहां पर बाबा ने ऐसा वातावरण बनाया बोले अंदर कि 8-8 संदेश है वतन में जाती थी और संदेश लेकर आती थी, और जो भी संदेश लाया वो बाबा को बताती थी कि इस प्रकार से। तो बाद में बाबा क्या करते थे, वो शाम को सभी जिन्होंने जो जो देखा वो प्रैक्टिकली करने के लिए बोलते थे, यानी जैसा ड्रामा कल जैसा यहाँ पर ड्रामा हुआ ना, उस प्रकार बाबा ने अंदर वैसा ड्रामा करने के लिए उसको बोलते थे। उसके लिए जो साधन सुविधा है कपड़े वगैरह है सब बाबा ने उपलब्ध करा के दे दिया। तो ये इस प्रकार का ड्रामा करते थे कि जैसा अंतिम समय में यानी जो डिवाइन फादर है बाबा के पास आए, कौन सा डिवाइन फादर बाबा के पास आएगा और वो बाबा उसको वरदान देगी और उसका कैसा उद्धार होगा, इस प्रकार एक ड्रामा बनाया था वो दिखाते थे। दूसरा प्रहलाद की कहानी, उसका भी ड्रामा बनाया वो भी बताते थे। बाद में सतयुग में राजधानी कैसी रहेंगी, वहां पर बच्चों का जन्म कैसा होगा, वहां पर भाषा कौन सी रहेंगी, वहां पर बच्चे पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे, ये सारा सीन जो भी संदेशा देखती थी वो सारा सीन वहां पर वो प्रैक्टिकल में दिखाते थे। तो इस प्रकार वो विभाजन के समय भारत पाकिस्तान, तो उस प्रकार बाबा ने सुरक्षित रखा, ये दादी ने थोड़ा वर्णन किया है। बाद में आगे दादी ने जो सिंध हैदराबाद में तीन घटनाएं बताई है कि जब वो बांधे लिया वो मंडल स्थापन हुई तो उसमें बहुत लोग यानी विरोध करते थे, उसके कारण बाबा के बहुत सारे रिश्तेदार भी उसके यानी खिलाफ जाते थे, यानी विरोध करते थे, वो मंडली को ऐसे हटाओ इस प्रकार का वो नारा लगाते थे। तो एक और जब माता ही थी, क्यों बहन ही थी, तो उसको वो मंडली में जाने के लिए उसके परिवार के लोग बहुत विरोध करते थे, जाने नहीं देते थे। तो ऐसे कुछ जब बांधेलिया माता ही थी कि बहन ही थी तो उनकी सेवा दादी करती थी। बाबा बोलते थे दादी आप हनुमान हो और जो सीता को चिट्ठी देकर आना आप, तो इस प्रकार बाबा दादी को भेजते थे। तो ऐसे एक बांधली माता का दादी ने वर्णन किया है कि उनका नाम ब्रजेंद्रा नहीं, उसका नाम क्या था, शील इंद्रा दादी थी। वो बहुत बांधली थी तो उसके घर के लोगों ने उसके 16 ताले के अंदर बंद करके रखा था, मगर वो इतनी लगन थी बाबा की, दिन रात तो बाबा ही करती रहती थी, बहुत लगन के साथ बाबा को याद करती थी। तो एक दिन बाबा ने बोला कि बच्ची बहुत मेरी याद कर रही, मेरे को उसकी आवाज सुनाई पड़ रही है, तो फिर उसको एक चिट्ठी लिखकर कौन देगा। तो सबको पूछा कोई जा सकते है क्या उसको चिट्ठी देने के लिए। दादी ने हाथ उठाया कि बाबा मैं जाऊंगी, उसको चिट्ठी देकर आ जाऊंगी। बाद में बाबा ने चिट्ठी लिखकर उनके हाथ में दी और जाओ बच्ची को यानी देकर आ जाओ। बाद में दादी गई तो वो बहुत बड़ा मकान था और जिस मकान में शीलेंद्र दादी को बंद करके रखा था वो यानी कमरा अंदर था और उसके चारों तरफ बाकी कमरे थे, तो बाकी सारे कमरे में ताले लगे हुए थे। तो दादी ने गई मगर वो किसको दिखनी भी चाहिए नहीं, क्योंकि दिखेंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए दादी वहां पर ऐसी गुप्त रूप में सब चेक कर रही थी कि शीलेंद्र दादी कहां पर मिलेंगी। तो वो इधर उधर सारे मकान के चारों तरफ घूमी, बाद में देखा मगर दिख नहीं रही थी, तो बाद में दादी सोच रही थी अभी क्या करे। बाद में लास्ट में तो वो शीलेंद्र दादी पानी की टंकी के ऊपर दिखी, उसको वहां पर बाबा को याद कर रही थी और बाबा बाबा बोल रही थी। तो इनका भी उसकी तरफ ध्यान गया और वो शीलेंद्र दादी का ही गया, तो एक दूसरे का कनेक्शन जुट गया। तो बाद में उस समय उसने इशारे सीखा, क्योंकि बोलते नहीं सकते थे ना कि बोलेंगे तो लोगों को पता चलेंगे ये आई करके, इसलिए यानी वो शीलेंद्र दादी ने इशारे से पूछा कि बाबा ने कुछ भेजा क्या, आपने क्या लाया। तो फिर दादी ने बोला हाँ एक चिट्ठी लाई मैंने, इशारे से बोला उन्होंने। तो फिर उन्होंने ऊपर से धागा फेंका, तो वो धागा उसने वो चिट्ठी बांध दी और बाद में दादी शीलेंद्र दादी ने धागा खींचा, इस प्रकार वो चिट्ठी उसको मिल गई। इस प्रकार दादी ने उसका यानी ये कर दिया, यानी उसको चिट्ठी पहुंचा दिया। बाद में दूसरी घटना हिंद हैदराबाद में, जैसे अपना एक वहां पर मुखिया था, वो भी बाबा का रिश्तेदार ही था मगर वो बहुत विरोध करता था रिश्तेदार होते हुए भी। तो बाबा ने एक दिन बोला कि उसको बच्चे आप जाओ उसको ज्ञान सुना के आओ मुखी को, और वो यानी निर्मल सेनता दादी का जो ससुर था उसका भाई था, उसका नाम हरि किशन था। तो बाद में वो बहुत विरोध करता था वो मंडली का, तो बाबा ने टेप रिकॉर्ड के लिया और उसमें गीत भरा कि पाप की दुनिया से दूर कहीं ले जाओ, इस प्रकार का गीत भरा उसमें और दादी के हाथ में टेप रिकॉर्ड दिया और दादी को बोला कि टेप रिकॉर्ड लेकर उनके पास जाओ और पहले उसको ये गीत सुनाना और बाद में बाबा का संदेश दे देना। तो दादी वो लेकर गई, तो उन समय वो लोग को जादू का ये चल रहा था, वो मंडली वाले जादू करते है। तो उन्होंने वो जब देखा दादी को टेप रिकॉर्ड लेकर आ रही थी, तो वो मुखिया को लगा ये जादू करने के लिए आ गई है और उन्होंने वो टेप रिकॉर्ड में जादू भर के लाया है। तो वो गई वो वापर, वो लोग वापर जमे हुए थे, तो वापर वो गीत सुनने के पहले वो लोगों ने क्या कहा इसमें जादू है और वो पत्थर मार मार के उसको तोड़ दिया। बाद में पाप खत्म हो गया, दादी बाद में वहां से वापिस आ गई। चलो वो उनके वहां तक तो दादी पहुंची, यानी दादी की हिम्मत देखो, एक स्त्री होती हुई भी वहां तक दादी ने वो गई और उनकी सेवा करके आई। बाद में तीसरी बात बाबा ने और एक दादी ने बताई कि साधु वासवानी जी था, उस समय उसका बहुत प्रभाव था, बहुत जाना माना संत माना जाता था सिंध हैदराबाद में, बहुत लोग उसको यानी उसकी बहुत फौज थी यानी शिष्य थे, लोग थे सब उसकी बात मानते थे, मगर वो भी वो मंडली का बहुत विरोध करता था। तो बाबा ने दादी को एक दिन बोला कि बच्ची वो साधु वासवानी जी के पास जाओ, उसको भी ज्ञान सुना के आ जाओ। तो वो तो एक तो बड़ा आदमी था, मगर दादी ने हिम्मत रखी जाने के लिए। तो बाबा ने पहले उसको बोला कि उसको बताओ, क्योंकि वो यानी पिकेटिंग करने का सोच रहा था कि वो मंडली के विरुद्ध अपन पिकेटिंग करेंगे। तो बाबा को पता चला कि वो भी विरोध कर रहा है, तो उसको पहले ज्ञान सुनाओ। तो उसको बोलो कि इस प्रकार का आप क्यों यानी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास रखते हैं, आप एक बार वो मंडली में आओ और देखो कि हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर वो मंडली में जो लोग आते हैं उसके अनुभव पूछो, ये ऐसा उसको बोलो और बाद में उसको ज्ञान देना। तो क्योंकि वो बड़ा आदमी था, दादी उसके साथ कार में बैठ कर गई, जैसे बाबा ने भी 10-15 दिन के पहले बोला था ना कि बड़े आदमी की सेवा करनी है तो सूट बूट पहन कर जाना चाहिए, तो उस प्रकार दादी कार लेकर गई, यानी दो बहने कार में बैठ करके साधु वासवानी जी को ज्ञान देने के लिए गए हो। तो जब उसके पास गए और वो बैठे थे, जाने के बाद दादी ने उसको पहले ज्ञान का यानी चर्चा की उनके साथ, तो ज्ञान की चर्चा की और बाद में उसको बाबा का संदेश दिया कि परमात्मा सिर्फ धरती पर आई है तो क्या कर रही, कौन सा कार्य कर रही है, बाद में बाबा का लक्ष्य क्या है यानी ज्ञान देने का लक्ष्य क्या है ये बताया। बाद में यानी हम लोग जो ज्ञान में चलते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई वो बताया, और बाद में ये यानी हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ तो ये भी बता दिया। ज्ञान सुनकर उसको बहुत अच्छा लगा साधु वासवानी जी को, तो बाद में दादी ने उसको निमंत्रण भी दे दिया कि आप वो मंडली में आ जाओ, तो वो तैयार हो गया आने के लिए, चलो भाई इतना अच्छा ज्ञान है तो मैं देखकर आ जाता हूँ। मगर बाद में वो तैयार हो गया, उसकी दादी के साथ कार में बैठ गया, तो बैठते हुए बाकी उनके जो शिष्य लोग थे तो उसको लगे ये वो मंडली में गया तो वो लोग इसको जादू कर देंगे, तो ये उनका ही हो जाएंगे, फिर हमारा कैसा हो जाएगा। फिर वो लोगों ने चारों तरफ से कार को घेरा और जाने नहीं दिया कि आप जाओ नहीं, तो वो साधु वासवानी जी ने अपने शिष्य को और बाकी लोगों को बोला कि आप डरो नहीं, मुझे वो लोग कुछ करेंगे नहीं, मैं खाली देख करके आ जाता। मगर वो लोग तो भी तैयार नहीं हुए, नहीं जाना ही नहीं बोले, चारों तरफ से एकदम कड़ो कोट उसने बंदिश तो घर दिया, उसको जाने नहीं दिया। तो फिर लास्ट में वो उतर गया, कार से नीचे उतरा और बाद में दादी को बोल रहा था कि बच्ची बोले मेरा वो दिल है बाबा को मिलने के लिए आने का, आपकी वो मंडली देखने का, लेकिन ये लोग नहीं बोल रहे तो मैं बाद में कभी भी आऊंगा बोले। तो दादी बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, क्योंकि हमारा जो फर्ज था ज्ञान देना वो हमने दे दिया, बाकी बाबा देखेंगे। इस प्रकार दादी ने करके वो लोग चले गए। बाद में वो साधु वासवानी जी को बाकी उनके शिष्य मंडली ने बहुत भड़काया कि वो मंडली के विरुद्ध, तो बाद में वो तैयार हो गया और पिकेटिंग करने के लिए वो मंडली में पूरे फौज के साथ आ गया एक दो दिन के बाद वो। तो बाद में वो भी आ गया, वो बाहर खड़ा था और बाकी उनके लोग हजारों लोग थे और वो तो नारा लगा रहे थे कि वो मंडली बंद को रिश्ता है, वैसे कुछ नारे थे उनके। तो बाद में इतना उसका आक्रामक रूप बढ़ गया था, लास्ट में उन्होंने वो मंडली की दीवार थी वो भी दीवार भी तोड़ दिया। तो दीवार तोड़ी तो बाद में पुलिस आ गई, पुलिस आकर के वो जमाव को यानी हटा दिया और साधु वासवानी जी को उसने पकड़ करके ले गए। इस प्रकार वो जेल में चला गया। तो ये हो गया यानी सिंध हैदराबाद में इस प्रकार से बाबा जाबर भी दादी को भेजते थे तो दादी जा करके यानी विशेष सेवा करके आती थी, यानी इतनी निर्भय थी। बाद में ये यह हो गए 1950 में, यानी सब लोग अपने भारत में आ गए वहां से। तो उसका दादी ने कुछ वर्णन में बताया है कि जब भारत में आए 1950 में तो आर्थिक का उस समय बहुत बेकरी पार शुरू हो गया, क्योंकि जो भी पैसा था वो भी खत्म हो गया था और उस समय कोई लोग भी देते नहीं थे धन, क्योंकि उनको लगता था कि इसकी वो यानी ये संस्था है ये बंद पड़नी चाहिए, ये लोग क्या करते थे हम देखेंगे, इस प्रकार कोई धन वगैरह देते नहीं थे। मगर दादी बता रही कि इतना बेगरी पार्ट होते हुए भी बाबा ने हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया, बोले कि यहाँ पर यानी कुछ बेगरी पार्ट है करके, यानी बाबा इतनी उस समय भी हमको अच्छी पालना दी बोले। और बाबा का यानी शिव बाबा और बहुत निश्चय था, उस निश्चय के साथ एक बल एक भरोसे इस रूप में बाबा यानी हिम्मत रखते थे, यानी बेफिक्र बादशाह अनुसार चलते थे बोले। तो उस समय सवेरे सवेरे सभी को बाबा यानी घुमाने के लिए जाते थे और वहां पर भी वो लोग नाश्ता कर लेते थे, बोलते फल फूल जो मिलते होंगे वो खा लेते होंगे। बाद में जो बड़े लोग थे उनमें से तो वो व्रत रखते थे और वो बोलते थे कि हम अज्ञान काल में व्रत रखते थे ना, तो अभी भी व्रत रखेंगे और व्रत रखा तो शरीर भी अपना अच्छा रहता है। इस प्रकार से वो बानाबाजी करते थे, क्योंकि वो बाकी भोजन छोटे लोगों को मिलना चाहिए वह, इसी कारण वो ऐसे करते थे। तो इस प्रकार बेगरी पार्ट में दादी बोल रही कि बाबा ने हमारी अच्छी पालना की। और जो कमजोर मन वाले लोग थे वो वहां पर उस समय चले गए कि अभी बाबा का सब खत्म हो गया, पैसे पैसे अभी ये संस्था चलने वाली है नहीं, अभी अपन को कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए वो लोग वो मन यानी भारत में आए उस समय संस्था छोड़ के चले गए। और बाद में उस समय बेगरी पार्ट के समय वो संदेश से हर दिन वो वतन में जाती थी और जाकर के हर एक संदेश लेकर आती थी। तो बाद में एक संदेशी ने ब्रह्मा बाबा के लिए एक संदेश लाया कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बोल रहे थे कि ये बच्चे को यहाँ पर बिठा के रखेंगे क्या, यानी उसको प्रजा बनानी नहीं है क्या, इसलिए सेवा में भेजे उनको। तो बाद में वहां से सेवा का पाठ शुरू हो गया। बाबा ने जो बहने थी भाई लोग थे उनको सेवा के लिए भेजते थे, हर एक को बाबा क्लास के बाद पूछते थे कि आज कौन जाएगा, हाथ उठवाते थे और जिन्होंने हाथ उठाया उन लोगों को भेज देते थे। मगर दादी की ऐसा विचार था उस समय कि मैं सेवा के क्षेत्र में नहीं जाऊंगी, क्योंकि उनके मन ऐसे विचार चलते थे कि जितने दिन से मैंने मम्मा बाबा की पालना ली, मेरे घर के परिवार के सभी लौकिक लोग ये अंदर ही रहते, फिर मैं उस बाहर दुनिया में जाके क्या करूंगी, मेरा कौन है, वहां पर मैं सेवा के लिए जाऊंगी नहीं। तो बाबा को लगता था ये हाथ क्यों नहीं उठा रही, जब मैं बोल रहा हूँ सेवा को जाओ करके, सभी को बोल रहा हूँ मगर ये हाथ पे हाथ समेट कर बैठी है, क्यों नहीं जा रही। तो दादी बोले मेरे को जाना ही नहीं था, बोले मेरे को डर लग रहा था, बोले बाहर की दुनिया में कैसे सेवा करे वह, सब लोग इधर ही है। तो बाद में एक दिन बाबा ने, क्योंकि बाबा को ही उसको भाग्य बनाना था, क्योंकि भविष्य बाबा जानते थे दादी का क्या है करके, तो एक दिन एक बाजू से मम्मा ने पकड़ा और एक बाजू से बाबा ने पकड़ा और दादी को जबरदस्ती बस में बिठा दिया कि आप जाओ सेवा करने के लिए। तो दादी बोले मैं रोती रोती गई बोले सेवा करने के लिए। तो सबसे पहले दादी को यानी अजमेर में भेजा, क्योंकि अजमेर में बहुत सारे सिंधी लोग थे, तो बाबा को लगा चलो भाई सिंधी लोगों की सेवा करेंगी, इसलिए वहां पर दादी ने अजमेर में कुछ दिन तक सेवा की। बाद में अजमेर से बाद में बाबा ने उसको दिल्ली भेजा, तो दिल्ली में दो तीन मास अच्छी सेवा की दादी ने। बाद में दिल्ली से अमृतसर भेजा, तो अमृतसर में दादी ने इतनी सेवा की कि पूरे पंजाब को भी ज्ञान सुना दिया। बाद में जम्मू काश्मीर में भेजा, वहां पर भी चले गई, यानी दादी जा जा जाती थी वहां पर सेवा की धूम मचा देती थी और हर जगह पर सेंटर सेंटर खुल जाते थे। तो इस प्रकार के में दादी ने इतने सारे जगह पर सेवा की और दादी को बाद में पंजाबी शेर का जो टाइटल मिला तो वो पंजाब में मिला। पंजाब की बहुत दादी ने अच्छे सभी प्रकार के लोगों की सेवा की, बदमाश लोगों की, नक्सलवादी लोगों की, जो भी है उन सभी की उनने सेवा की। तो उसके कारण तो उसकी हिम्मत वो ये देख करके बाबा ने उसको टाइटल दे दिया पंजाबी शेरनी। हाँ शेर है पंजाब, तो ये टाइटल दे दिया। बाद में दादी अमृतसर में रहती थी, अमृतसर में सेवा करती थी। तो बाद में हापुड़ का हंगामा हुआ, वो तो सब अपने यज्ञ इतिहास में बहुत फेमस है हापुड़ का हंगामा। तो वहां पर लोग क्या करते थे, जो भी उसका नारा था कि ब्रह्म कुमारे हापुड़ छोड़ो, तो जो भी लोग जाते थे वो लोग जो भी जाते थे हापुड़ में उसकी बुरी गत कर देते थे वो लोग, क्योंकि वहां पर एक संताराम भाई गया था तो उसको एकदम बुरा हाल कर दिया उन लोगों ने, हंगामा करने वाले ने। बाद में एक बलदेव भाई था वो उसके वो मार्केट में गया था कुछ काम के लिए तो उसके ऊपर सांप फेंक दिया उन लोगों ने। बाद में एक महेंद्र भाई अपने भोपाल का महेंद्र भाई था, दादी बता रही थी, तो उसको तो उसने कपड़े उतार दिए उन लोगों के उसके। तो इस प्रकार के जो भी जाता था उसका ऐसा बुरा हाल करता था। तो फिर उस समय हापुड़ के हंगामे के समय ब्रह्मा बाबा को दादी याद आ गई, अभी वहां पर जाएंगी कौन, सेवा कौन करेंगी, तो दादी सेवा कर सकती है। तो इसलिए बाबा ने दादी को बुलाया कि बच्ची आप हापुड़ में जाओ। तो दादी उस समय आई और मम्मा करनाल में थी, तो दादी ने मम्मा को बोला कि बाबा मेरे को क्यों भेज रहे, वो तो दिल्ली के कनेक्शन में आता है हापुड़, तो दिल्ली वाले को भेजना चाहिए, तो मुझे क्यों भेज रहे बाबा। तो मम्मा ने बोला कि बाबा बोल रहे ना तो आप जाओ। तो वो बोले मैं जाके वहां पर क्या करूंगी, क्योंकि वो हर लोग तो हर के बे यानी बुरी गत कर देते है, क्योंकि तो मैं ही जाके कौन सी सेवा करूंगी वहां पर, भाई लोग को भी वो छोड़ते नहीं। तो मम्मा ने बोला नहीं आप जाओ और वहां पर दृष्टि देना उन लोगों को, योग करना उनके लिए। तो योग ये दादी को बहुत पसंद था, यानी दादी बहुत योग करती थी और योग करने से बहुत अपनी यानी निर्भयता की शक्ति बढ़ती है। तो दादी को पॉइंट अच्छा लगा, चलो भाई योग करने के लिए तो मैं जा सकती हूँ, उन लोगों को मैं सकास दूंगी। तो बाद में दादी हापुड़ में गई, हापुड़ में जाने के बाद जहां पर अपना सेंटर था तो उसके ऊपर पानी की टंकी थी, तो वो पानी की टंकी पर दादी बैठती थी और सारे शहर को यानी सकास देती थी। इस पर खेरे दादी ने सकास का कार्य किया है उधर। तो बाद में उन लोगों को ये बदमाश लोग थे उनको पता चल गया, उन लोगों की 8 लोगों की टीम थी वो, हाँ नहीं वो जो हंगामा करने वाले थे ना हापुड़ में, तो वो लोगों की इतनी 8 लोगों की टीम थी। तो उनमें एक तो इतना बुरा था, बोले दादी अपने वर्णन में बता रहे शब्दों में कि वो उन्होंने 1-2 खून भी किए थे और इतने लोग उसको डरते थे वाकई, यानी हापुड़ के तो बहुत लोग डरते थे और वो यानी रिद्धि सिद्धि वाला ही था बोले। तो उन 8 लोगों को पता चला, वो हर जगह पर वो 8 लोग भी हंगामा करते थे। तो दादी आ गई उनको पता चला, बाद में वो लोग आए बोलते वहां पर, तो दादी बैठी थी। तो बाद में वो इस कारण से एक माता थी वहां पर रज्जू माता, तो वो रज्जू माता को कारण बनाकर वो लोग हंगामा कर रहे थे। तो वो दादी ने बाद में वो रज्जू माता की स्टोरी सुनाई कि वो माता की उम्र 60 साल की थी और उसने जब ज्ञान सुना तो उसको ज्ञान बहुत अच्छा लगा। तो बाद में उन्होंने वो ब्रह्मा कोण में आने के लिए ये कर रहे थे बोलते, उसे घर का पति था वो बहुत विरोध कर रहा था क्योंकि ये बोल रहे थे मैं पवित्र रहूंगी। तो उसने क्या किया, उसको घर से बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद उसके पास वो 5 रुपए थे बोलते उस समय, तो 5 रुपए लेकर वो कमला नगर सेंटर पर आ गई और बाद में बहनों को बोलने लगी कि मैं यानी आपके यहाँ पर रहती हूँ, ये जो भी सेवा है माइयों की यानी बर्तन मांजना झाड़ू पोछा करना ये सेवा मैं करूंगी, मेरे को रख लो यहाँ पर। तो बाद में वो लोगों ने उसको यानी बहनों ने रख दिया, चलो भी करेंगी सेवा करके, घर के लोग विरोध कर रहे थे अपन रख देंगे। बाद में क्या उसके जो पति था उसने वो कारण को एक हवा बना करके यानी वो लोगों में फैला दिया कि मेरी जो पत्नी है वो घर से सोना लेकर ब्रह्म कुमारी के पास भाग गई। तो बाद में उसके कारण वो लोग हंगामा कर रहे थे, मगर उसका पति झूठ बोल रहा था, उसने तो खाली घर से 5 रुपए ले गए थे, कहीं ये तो सोना लेकर नहीं गई थी वो। तो बाद में दादी आई, वो लोग हंगामा कर रहे थे, तो दादी को लगा चलो भाई इन लोगों को समझाएंगे अपन समझेंगे। तो बाद में दादी आई और उसको समझाने लगी कि वो हंगामा कर रहे आप क्या कारण, वो लोग को समझे नहीं, वो लोग यही बोल रहे थे कि आप यहाँ से चले जाओ, ये मकान छोड़ दो तुम, यही हमारा यही बोला, आप चले जाओ तो हम शांत हो जाएंगे, जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक हमको शांत होने वाले नहीं बोले। तो फिर दादी ने और वो लोगों ने क्या किया, जो मकान में रहते थे वो मकान मालिक से वहां पर जो नल था, नल और बाकी बिजली वगैरह थी उसको काटने के लिए बोल रहे बंद कर दो। तो मकान मालिक ने वो बिजली और नल वगैरह कनेक्शन का कट कर दिया और बाद में ये सेंटर पर ये यानी सब्जी या दूध लाने के लिए कई लोग आते थे या बाथरूम के साफ करने के लिए ये लेबर आते थे, उनके उसने आने नहीं दिया उन बदमाश लोगों ने कि आप भी जाना नहीं, तो अंदर कोई जाना नहीं चाहे, तो बाद में ये लोग तंग हो जाएंगे और बाद में ये सेंटर छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा उनका लक्ष्य था। तो बाद में वो लोग सबको ये करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दादी ऐसी बैठी थी, तो बैठते बैठते बदमाशों में एक जो बुरा था वो दादी के सामने आकर बैठ गया और दादी को बोलने लगा आप यहाँ से आप चले जाओ। तो दादी बोले हम क्यों जाएंगे, नहीं बोले आपको जाना है क्योंकि मेरे को आप पहचानते नहीं, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ और मेरे पास बहुत शक्ति है, मैं शेर को भी बुला सकता हूँ, ऐसा बोल रहा था। बोले कि मैं शेर को बुलाऊंगा तो आपको शेर खा लेगा, तो मैं सब दिखा दूंगा आपको। तो दादी ने सब सुन लिया और दादी ने बाद में बोला ठीक है आपको जो दिखाए ना दिखा लो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बाद में वो भी हैरान हो गया कि मेरे को इतने सिटी के लोग डरते हैं और ये ब्रह्म कुमारी कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है इनके ऊपर, तो वो भी वंडर खा रहा था। यानी देखो दादी के अंदर उस समय निर्भयता की इतनी शक्ति थी और बाबा के ऊपर इतना निश्चय था कि बाबा बैठा है तो हमें कोई कुछ बिगाड़ने वाला है नहीं, ये शक्ति के साथ दादी जो भी आता था उसके साथ में यानी डरती नहीं थी किसी को। तो इस प्रकार दादी ने उसको देखा, मगर वो लोग बाद में चला गया, जाने के बाद भी उन लोगों ने छोड़ा नहीं उनको, बाद में कुछ न कुछ तंग करते रहते थे। तो बाद में क्या किया, इन लोगों को दूसरा मकान नहीं मिल रहे थे, बहुत लोग तंग कर रहे थे, तो बाद में एक मकान मिल गया दादी को। मकान मिलने के बाद उसने ये किया कि ये सामान अपन दूसरे मकान में शिफ्ट करेंगे। तो बाद में वो लोग सब सामान लेकर जा रहे थे, अपनी गाड़ी में बिठाया, तो बाद में वो बदमाश लोगों में से उन्होंने एक रिक्शा भेजा कि इसको रिक्शा में बिठा कर कहीं पर भी लेके जाएंगे। तो फिर दादी को बोल रहे थे कि आप इस रिक्शा में बैठो, तो दादी को बाबा ने टचिंग किया होगा रिक्शे में नहीं बैठना चाहिए, दादी ने बोला हम रिक्शे में नहीं बैठते, हम पैदल ही जाएंगे, हम आपके रिक्शे की जरूरत नहीं। और वो लोग क्या दादी को मारने वाले थे, बोलती हो इसको कहीं थी खत्म कर दे अपने, तो बाद में इसका वो संस्था यहाँ से लोग भाग जाएंगे अपने आप। तो बाद में पुलिस वाले को दादी ने कुछ बोला नहीं, मगर वो पुलिस वाले ऑटोमेटिक वहां पर आ गए, बोलते पीछे पीछे दादी के ये लोग सामान शिफ्ट करके आगे जा रहे थे वो ट्रक के पीछे पीछे, और बाद में पुलिस भी आ गई। तो दादी ने उस समय ये वर्णन किया, देखो बाबा को कितनी हमारी फिक्र होती थी कि जो भी हम हर कार्य करते थे बाबा की नजर रहती थी और हर समय बाबा हमको हमारी रक्षा करते थे। तो बाद में क्या हुआ, उन जो लोग थे उनको मारने के लिए आए थे तो उनका एक जने का गला ही बैठ गया, बोलते उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रहा था कि क्या बोले करके। और बाद में उन लोगों को ऐसा साक्षात्कार हो गया कि दादी के चारों तरफ उसको ऐसे रोशनी रोशनी दिखाई पड़ी और दादी को भी ऐसा आत्म अनुभव हुआ उस समय कि मेरे चारों तरफ यानी ऐसा प्रकाश निकल रहा करके। तो वो दादी ने अनुभव में बताया कि ऐसा मेरे को उस समय अनुभव ही हुआ। बोले बाद में वो देखने पर भी लोग वो हटे नहीं, वो लोग उसके पीछे पीछे आते रहे। बाद में जो उनको नया मकान मिला था तो उस मकान में उन लोगों ने पहले ताला लगा दिया था, बाद में दादी के देखते तो ताला लगा है। दादी ने उन लोगों को बोला ये तो मकान हमारा है, आप क्यों यहाँ पर ताला लगा के रखा है। तो वो लोग बोल रहे थे बोले हमारा है, तो दादी बोल रही थी कि ये भगवान का कार्य है, थोड़ा डर हो आप इतनी क्यों ये कर रहे, मगर वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं। बाद में दादी थाने गई, थाने में जाकर पुलिस को लेकर आई और पुलिस ने ताला उसका तोड़वा दिया, तोड़ करके बाद में इनको उस कमरा खाली करके दिया, बाद में इन्होंने अपना सामान वहां पर शिफ्ट कर दिया। तो वहां पर भी वो लोग उनको छोड़ते नहीं थे, वो भी तंग करने लगे। बाद में मेरठ में अपने जगदीश भाई लिखापटी के लिए आते थे, बोले दादी ने बताया। तो बाद में ये सब देखा उन्होंने जगदीश भाई ने वगैरह, तो वहां पर एक मंत्री था बोलते आर्य समाज जी। तो बाद में जगदीश भाई ने उस मंत्री को अपने सेंटर पर बुलाया और सब कुछ बता दिया। बाद में उस मंत्री ने जो बदमाश आठ लोग थे उसको भी बुलाया और अपने आठ लोग बिठाया ऐसे, और बाद में जो रज्जू माता थी उसी कारण सब हंगामा कर रहे थे तो उसको ही बुलाया और उसको ही पूछा कि क्या हो गया। तो उसने सारी हकीकत बता दिया कि मैंने घर से कुछ सोना वगैरह लेकर नहीं आई थी, खाली में 5 रुपए लेकर आई थी भी। तो उसने लगा ये छोटे से कार्य के लिए लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे। तो बाद में वो मंत्री ने क्या 5 लोग को जेल में भेज दिया, तो उसको जेल की हवा मिल गई। बाद में दादी बोले हमें थोड़ी शांति मिल गई, बोले कि बाद में चलो भाई वो लोग गए तो हम शांति में रहे। तो बाद में दादी अमृतसर आ गई, तो अमृतसर में आ गई तो बाद में वो लोग बाद में जैसे छूट गए, छूटने के बाद तो फिर उसने हंगामा शुरू कर दिया और बाद में उसने दूसरा पॉइंट निकाला कि ये ब्रह्म कुमारी है, ये यानी आंखों में आग डालकर जादू करती है, और दूसरा कि भाई यानी पति पत्नी को भाई बहन बनाती है। इस पॉइंट पर उसने और हंगामा मचा दिया। तो वो बात इंदिरा गांधी तक गई, तो बाद में इंदिरा गांधी ने जितने अपने ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स है सभी पर एक एक CID भेज दिया कि आप जांच करो कि वहां पर क्या करते हैं लोग करके। तो बाद में वो दादी अमृतसर में थी, तो अमृतसर में उस समय एक CID आ गया, तो वो DSP था और CID के रूप में वहां पर इंक्वायरी करने के लिए आया था। तो वो साधारण वेश में आया था, अपने साधारण वेश में आकर के सेंटर पर आया और दादी को बोला उसने कि मेरे को राजयोग सीखना है, मेरा कोर्स करा दो। तो दादी ने उसको बोला कि मैं कोर्स तो नहीं कराती, मगर एक माता है वो आपका कोर्स कराएंगी, तो आपका समय हम मुकर्र करके देते, तो आप उस समय पे बराबर सवेरे सवेरे आते जाना। तो वो एक दिन बराबर समय पर आ गया सवेरे, बाद में उसको सीखा, थोड़ा बताया अपना राज्योग और बाकी का कोर्स वगैरह कराया। बाद में दूसरे दिन वो दूसरे समय पर आ गया, यानी दिन के समय में आ गया। तो क्योंकि उसको चेक करना था, ये लोग बाद में सारे दिन भर में क्या करते हैं, भाई इसकी चाल चलन ठीक नहीं, ऐसे उसको ये मिला था। तो फिर ये दादी को पता नहीं था, तो दादी ने बाद में उसको डांट लगाई, आपको जो हमने समय दिया था सवेरे का, फिर आप ये दिन के समय में क्यों आ गए। तो वो फिर बयानबाजी करने लगा, हमारे घर में ये आया था वो आया था। तो दादी को लगा चलो भाई इनके घर में कोई मेहमान आया होगा इसलिए वो बाद में आ गया, तो ठीक है। बाद में थोड़ा उसका कोर्स करा दिया। बाद में तीसरे दिन है तो और भी समय पर आ गया दूसरे, तो बाद में और भी कुछ बयानबाजी बताने लगा। बाद में चौथे दिन भी वो अलग समय पर आ गया, दादी को लगा इसमें कोई वो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, इसमें कोई संशय दादी को पैदा हो गया। तो बाद में दादी ने उसको बोला कि आपको जब हम समय मुकर्र करके दिया सवेरे का, तो फिर आप उस समय क्यों नहीं आते, ऐसे बाकी समय पर क्यों आते। तो आपको एक तो कोर्स करना है तो करना है तो नहीं आओ, आपको हम कोई लेन देन नहीं आपसे, आप नहीं आना नहीं तो कोर्स करने के लिए। तो बाद में वो सीआईडी था, उसको समझ में आ गया कि मेरा इन लोगों को संशय आ गया। तो फिर उसने क्या किया, दादी के ऐसा हाथ लगाया, हंसा और कोई बात नहीं कोई बात नहीं ऐसा बोलकर दादी को टच किया, उसने हाथ लगाया। तो जैसा गुजुर्ग लोग छोटे बच्चे को लगाते हैं उस प्रकार का हाथ लगाया उसने। तो दादी एकदम चिढ़ गई, दादी ने बोला आपने मेरे को हाथ क्यों लगाया, हमें इतनी पवित्र आत्मा है, हमने हमारा तन मन धन सब बाबा के यज्ञ समर्पित हुए बाबा पर, हम ये पवित्र शरीर है हमारा, आपने क्यों हाथ लगाया, आप यानी पापी आप कपटी, इस प्रकार दादी बोलती गई। तो वो डर गया कि डरने के बाद दादी ने एक बहन को बुलाया और बोला कि फोन करो पुलिस को, बोला इसको पुलिस की हवा दिखाएंगे अपन, ऐसा बोल करके हवालत में भेजेंगे। तो बाद में वो बहन आ गई, उसने फोन भी लगा दिया। तो बाद में वो भाई ने सच्चाई बोली, उसने फोन कट कर दिया और बाद में पूरा सच्चाई बता दिया कि हम आप लोग ब्रह्म कुमारी ठीक नहीं बाकी चाल चलन, ऐसा इंदिरा गांधी के पास बाकी समाज ने कम्प्लेंट की थी बोले, उसी कारण हम यानी आपका सब देखने के लिए चेक करने के लिए मैं आया था, मैं एक डीएसपी हूँ, यानी उसने अपना परिचय दे दिया सब प्रकार के। बाद में दादी ने सब दादी को पता चला, बाद में दादी को भगवान के मावा की याद आया कि बाबा ने हमें पहले बोला था बोले कि इस प्रकार के पेपर आएंगे कि आपको लौकिक अलौकिक पेपर आएंगे, समाज द्वारा पेपर आएंगे और गवर्नमेंट द्वारा पेपर आएंगे। तो दादी को फिर ये हो गया, निश्चय हो गया कि बाबा ने बोला था गवर्नमेंट तरफ के भी पेपर आएंगे, तो उस प्रकार गवर्नमेंट से पेपर आएगी आगे। तो इस प्रकार दादी सब पेपर में पास होगी वहां पर। तो बाद में अमृतसर से बाद में दादी को यानी जब दीदी ने सर्दी छोड़ा, तो दादी बाद में बड़े दादी ने दादी को मधुबन में बुला लिया। बाद में बड़ी दादी और दादी दोनों मिलकर मधुबन में अपनी सेवा करते थे। बाद में जब ज्ञान सरोवर बना, तो ज्ञान सरोवर में 95 में दादी गई, क्योंकि जिन लोगों ने पालना ली होंगी उनको तो पता होंगे दादी की दीदी की, क्योंकि दीदी को तो हमने पालना भी नहीं लिया और मैंने देखा भी नहीं दादी को, मगर दादी के जो बुक्स में जो भी अनुभव था उसके आधार से मैंने बता दिया। तो बाद में और आगे थोड़ा 5 मिनट, तो बाद में जो हर एक आत्मा का ये यानी शरीर छोड़ने का दिन आता है, वैसे दादी भी जब दादी का अंतिम समय आ गया, तब दादी यानी बेंगलोर में गई थी, बेंगलोर में सेवा के निमित्त वहां पर शिवरात्रि की सेवा थी, तो उस सेवा के लिए दादी गई थी। 3-4 दिन दादी ने वहां पर बहुत अच्छी सेवा की और सेवा करने के बाद अचानक दादी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद दादी को एकदम सिर में बहुत दर्द होने लगा, सिर दर्द एक दिन ऐसा कंटिन्यू रहा। बाद में डॉक्टर को बुलाया लेकिन तो वो ठीक नहीं हुआ। बाद में वो दूसरे दिन यानी रात को दादी ने 10:40 में यानी दादी को हार्ट फेल हो गया और उसमें दादी ने अपना पुराना चोला छोड़कर बाबा की गोदी में चली गई। वो दिन तक 11 मार्च 1997 रात के 10:40 में दादी ने अपना शरीर छोड़ा। बाद में वो डेड बॉडी इधर लेके आए और बाद में यहाँ पर भी यानी शांति वन, ज्ञान सरोवर और पांडव भवन चारों धाम की यात्रा करा के इधर ही अंतिम संस्कार किया गया। बाद में एक थोड़ा संदेश बता देता हूँ कि बाद में गुलजार दादी द्वारा संदेश लिखा है दादी का, तो संदेश भी वंडरफुल था दादी का, क्योंकि जब गुलजार दादी संदेश लेकर यानी गई वतन में तो देखा तो बाबा अकेले बैठे थे। तो बाबा के साथ नई मुलाकात हुई दादी की, गुलजार दादी की। बाद में दादी ने बाबा को पूछा कि दादी कहाँ है बाबा, तो उस समय दादी बाबा के पास नहीं थी। तो बाद में बाबा ने दादी को बुलाया, बच्ची आपकी सखी आपको मिलने के लिए आई है। तो ऐसे बोलते ही दादी एकदम वापस यानी ये हो गई, अवतरण हो गई, यानी दिखी दादी को। तो दिखते ही गुलजार दादी ने बोला है कि जैसे साकार में दादी हंसती थी और मिलती थी, उसी प्रकार हंस रही थी और बार बार मेरे को यही कर रही थी कि मैं वतन में आ गई हूँ। आप पहले वतन में जाते थे, बाबा को मिलते थे, आपको कैसे मजा आती थी, अभी मेरे को बहुत मजा आ रही वतन में, यानी बहुत मैं खुश हूँ यहाँ पर, क्योंकि बाबा ने मुझे वतन में बुला लिया, मैं वहां पर आ गई, यानी मेरे को अच्छा लग रहा। यानी बाद में गुलजार दादी को वंडर लग रहा था कि यानी दादी को यानी शरीर छोड़ा, दादी ने शरीर छोड़कर आई, मगर उसके शक्ल में या बुद्धि में कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा, तो इतनी खुश दिखाई दे रही बोली। मैं गंभीर हो गई बोली, और वो खुशी खुशी में थी बोली। और बाद में मैंने बोला, बोले क्या सभी लोग आपको याद कर रहे हैं, तो दादी बोल रही थी बोले कि उसको बताना कि मैं वतन में बहुत खुश हूँ, मेरे की भी याद दे देना। इस प्रकार दादी यानी वतन में ही थी, मगर यानी कोई ये नहीं था, उसका अटैचमेंट नहीं था। इस प्रकार गुलजार दादी ने उसका संदेश लाया। तो इस प्रकार हमारी चंद्रमणि दादी यानी सर्व गुणों का सागर थी, निर्भय की शक्ति थी उसके अंदर, और बाबा पर इतना निश्चय था उसका, और हर कार्य निश्चय के साथ करती थी। ऐसे महान आत्माओं को हम सभी की तरफ से शत शत प्रणाम। ओम शांति।